ओम शांति। संध्याकालीन बेला में रूहानियत से भरपूर सत्यता निर्भयता नेतृत्व की शक्ति कूट कूट कर भरी स्पष्ट वादिता जिम्मेवारी निभाने में उमंग उत्साह से भरपूर आज्ञाकारी ईमानदार यज्ञ के प्रति वफादार अनेका अनेक गुणों से संपन्न हमारी परम श्रद्धेय आदरणीय सुषमा दीदी जी हमारे बीच हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और उनको नमन करते हैं। 1960 में आपकी मुलाकात मम्मा से हुई और उसकी दिव्य अमिट छाप ने आपके जीवन को आगे बढ़ाया। 1971 से आपने चंडीगढ़, ऋषिकेश, बनारस, पटना इत्यादि स्थानों पर भी आपने अपनी सेवाएं प्रदान की। 1977 से 80 तक विदेश में जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड में भी आपने अपनी सेवाएं प्रदान की। 1982 से जयपुर में अनेकानेक सेवा केंद्रों को, जो कि आज सब जोन के रूप में आप अपनी बहुत सुंदर सेवाएं प्रदान कर रही हैं, बहुत अच्छे ढंग से। आपने वक्त के सीने पर भी हस्ताक्षर किए हैं और आपने आगे बढ़कर हर चुनौती को स्वीकार किया है। स्पष्ट वादिता तो सच में पूछो मुझे इतनी अच्छी लगती है कि जब दीदी मुरली क्लास कराते हैं तो हम हमेशा दीदी का क्लास सुनते हैं और जब सुनते हैं तो वो अंदर उतरता चला जाता है। आप में गंभीरता रमणीकता का आपके जीवन में अद्भुत संतुलन है। मधुबन में भी आपकी भट्टियों के क्लासेस कराने के लिए आपको आमंत्रित किया जाता है। आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में प्रमुख वक्ता की हैसियत से भी सदा भाग लेते रहते हैं। तो दीदी जी के लिए जो विशेष हैं, अपनी हिम्मत पर उड़ने के काबिल हैं हम। दीदी की ये विशेषता है, अपनी हिम्मत पर उड़ने के काबिल हैं हम। मौसम की हवाओं के सहारे नहीं, रुख हवाओं के मोड़े हैं हमने सदा। हम परिंदे हवाओं से कभी हारे नहीं, हम परिंदे कभी हवाओं से हारे नहीं। तो आज अनुभव के साथ हम सब के आगे स्पष्ट करने के लिए आई हैं, अचल अडोल एकरस स्थिति हमारी कैसे बने। आदरणीय सुषमा दीदी जी,
इस पुण्य संध्या में विशेष यूपी जोन के आए हुए भाई बहनों का, साथ ही साथ अन्य स्थानों के भाई बहनों का भी तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आप सब बाबा का घर, सो बच्चों का घर, ब्रह्मा बाबा का घर, सो ब्राह्मणों का घर, शिव वंशावली हम आत्माओं का घर तो यूं परम धाम है, लेकिन संगम युग पर शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों का जो सूक्ष्म स्थापना का गुप्त पार्ट है, उस पार्ट को समझने वाले बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चों का बाबा के घर में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। अगर किसी से भी पूछेंगे आपको निश्चय है, अचल अडोल है, तो शायद हम सब हाथ उठाएंगे, है ना? इसलिए हाथ नहीं उठवाती हूं, क्योंकि हम कहते तो हैं पर थोड़ा सोच के जवाब देना। अपने आप को अपने अंदर झांक कर देखें, सचमुच मुझे बाबा में निश्चय है? निश्चय बुद्धि विजयंती, गीता में भी है, निश्चय बुद्धि विजयंती। अगर हमारे अंदर निश्चय है तो हमें कभी सोचना नहीं पड़ेगा, कहना नहीं पड़ेगा पता नहीं ये काम होगा नहीं होगा, पता नहीं ऐसा होगा नहीं होगा, पता नहीं ये मिलेगा नहीं मिलेगा। निश्चय बुद्धि को ये मालूम है, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन उसमें विशेषता क्या चाहिए? निश्चय में अचल, अटल, अडोल। अब अपने अपने से हम पूछें, क्या मेरा निश्चय सुदृढ़ है, अचल है, अडोल है? या कोई कह दे फलां जगह भगवान आया है, हम वहीं चल देंगे, फलां जगह जो है ना वो बाबा आता है। बाबा एक, बाबा का स्थान एक, बाबा की मुरली एक। बहुत से भाई बहन अपना अपना मनन चिंतन करके भी सुनाते हैं, कुछ एडिशन करके भी सुनाते हैं, लेकिन बाबा ने जो कहा है उस श्रीमद् भगवत गीता में भी है, हे अर्जुन मैं जो हूं जैसा हूं वैसा मानकर जो मुझे पूजते हैं मैं उनको प्राप्त होता हूं। भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। मैं आत्मा कौन, अपने से पूछें। मैं जो हूं जैसा हूं, अभी आप 3-4 दिन बाबा के घर में रहेंगे, मोटा मोटा नोट कर लीजिए डायरी में, चलते फिरते उठते बैठते अपने से यही बात करनी है, मैं जो हूं जैसा हूं, जो गीता में कहा है। अर्जुन को निश्चय करने में कितना समय लगा देखो, 18 अध्याय सुना। जब वो भगवान का साक्षात्कार करता है विराट रूप का, तब कहता है बस भगवान बस कीजिए, मैं समझ गया। अभी ऐसा समय चल रहा है, क्या भगवान का विराट रूप नहीं दिखाई दे रहा है? विराट माना कोई ऐसा भयानक और ऐसा रूप नहीं होगा, वो विराट रूप दिखाते हैं ना, भक्ति में चित्र देखा होगा आपने, एक तरफ वो राक्षस दिखाते हैं, एक तरफ देवताएं लगे हुए चेहरे के साथ दिखाते हैं। भगवान आकर पुरानी दुनिया का विनाश करते हैं, दुनिया जो आसुरी बन चुकी है, मनुष्य राक्षस से भी बदतर हो चुका है, ऐसी दुनिया का विनाश करके नई सत्युगी दुनिया की स्थापना करते हैं। आपने बहुत से सत्संग किए होंगे, बहुत से बड़े बड़े संत महात्माओं के प्रवचन सुने होंगे, सब ये तो कहते हैं भगवान को याद करो, भगवान में निश्चय रखो, भगवान ही नैया पार ले जाएंगे। लेकिन वो भगवान कौन है जो गीता में भी कहा है मैं जो हूं जैसा हूं? ऐसा नहीं कहा मैं देवताओं जैसा हूं, मनुष्य जैसा हूं, नहीं, मैं जो हूं जैसा हूं। तो वो कौन है? वो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु। क्या मेरा योग इस प्रकार से है जब हम बाबा की याद में बैठते हैं? कोई कोई तो ऐसे समझते हैं शायद सामने ब्रह्मा बाबा का चित्र है, बस इसको देखते रहते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने भी याद किसको किया? चित्र इसलिए है, हमारी बैठक कैसे हो और बाबा ने भी किसको याद किया? जब बाबा साकार में थे, हम लोगों ने बाबा को देखा, उस समय अगर कोई कहता था बाबा, क्योंकि जो आते थे भाई बहन उनके मन में शौक होता था, बाबा आपके साथ एक फोटो खिंचवाएं, आपको सुनकर हैरानी होगी कि बाबा कहते थे बच्चे इसका चित्र नहीं लेना है, इसको भी याद नहीं करना है, ब्रह्मा को भी याद नहीं करना है, याद किसको करना है? ज्योति बिंदु शिव बाबा को याद करना है। इसलिए आप देखेंगे जो पुराने पुराने भाई बहने हैं, बहुत कम भाई बहनों के पास बाबा के साथ के फोटो हैं, कम। हम लोग भी जब पहली बार मधुबन में बाबा से मिलने आए, हमारा लौकिक परिवार पूरा था, हम तो छोटे बच्चे ही थे, 10-12 साल के लौकिक मां बाप थे। और उससे पहले जब हम मधुबन में आए, उससे पहले बाबा की मुरलियां बहुत चली थी कि बच्चे इसका फोटो नहीं रखना है, इसका फोटो नहीं लेना है। तो मन में संकोच भी रहा और कहा भी नहीं। एक दिन दोपहर को ब्रह्मा भोजन के बाद बाबा ने कहा, बच्चे आज बाबा इन बच्चों के साथ फोटो खिंचवाएगा, और बाबा स्वयं हमें ले चले 4-5 जगह अलग अलग फोटो खींचे। उस समय बाबा कहते थे बच्चे देह को याद नहीं करना है, देहधारी को याद नहीं करना है, याद उस ज्योति बिंदु को करना है। तो जब बात आती है अचल, अडोल, अटल रहने की, तो ये बात समझने की है बाबा को याद कैसे करना है। स्वयं वो निराकार इस धरा पर आया हुआ है। नई सत्युगी दुनिया की स्थापना कर रहा है। आप किसी भी धर्म को देख लीजिए, अन्य अन्य जितने भी धर्म हैं, धर्म पिताओं ने उनकी स्थापना की। इब्राहिम ने की तो इस्लाम धर्म हो गया, क्राइस्ट ने की क्रिश्चियनिटी हो गई, बुद्ध ने किया तो बौद्ध धर्म हो गया। लेकिन परमात्मा ने जो धर्म स्थापन किया वो किसी को पता नहीं है। वो निराकार सर्वशक्तिवान सर्व गुणों का भंडार पिता परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं तो आकर मनुष्य को देव बनाते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। अब स्वयं से पूछिए, क्या मुझे निश्चय है कि मैं देवता बनने वाली आत्मा हूं? आप जहां भी बैठे हैं केवल एक सेकंड सीधा होकर बैठिए और अपने आप को अपने भीतर अपना पूरा ध्यान यहां ले आइए, भ्रिकुटी के बीच में, मस्तक के बीच में। और महसूस कीजिए, मैं आत्मा यहां विराजमान हूं। देवता बनने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा। ये अभ्यास कीजिए बार बार। क्या आज तक किसी गुरु गोसाई ने ये कहा? कि हम देवी देवता धर्म की स्थापना करेंगे। हालांकि आजकल तो बहुत कह रहे हैं सनातन धर्म सनातन धर्म। बाबा ने इसमें भी एडिशन किया है, सनातन माना है पुराने से पुराना जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। लेकिन वो धर्म कौन सा है? सनातनी तो हैं, हम पक्के सनातनी हैं, लेकिन कौन से सनातनी? तो बाबा ने क्या कहा, आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो हम आत्माएं कौन है? हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं। अब अपने से पूछिए, क्या मुझे ये निश्चय है मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्मा हूं? कई भाई बहन पूछते हैं, बहन जी लोग कहते हैं कि आप तो ब्रह्मा कुमारियों के पास जाते हो तो आपने तो भक्ति पाठ पूजा सब छोड़ दिया। तो बाबा ने क्या कहा, हमने सब छोड़ दिया? कौन कौन कहते हैं हमने भक्ति पाठ पूजा छोड़ दिया? हाथ उठाओ तो जो जिन्होंने छोड़ दिया, उठाओ। कोई कोई माताएं हाथ उठा रही हैं, कहती हैं हमने भक्ति पाठ, भाई भी उठा रहे हैं। तो आज से यही पक्का करके जाइए, हमने पाठ पूजा छोड़ा नहीं है तो क्या किया है? बाबा स्वयं हम बच्चों को देवी देवता बना रहे हैं। क्या विचार है, ये राइट है या रॉन्ग है? जो कहते हैं राइट है हाथ उठाओ। तो ये बात समझ में आई, हमने पूजा नहीं छोड़ी, लेकिन हाँ वो स्थूल रूप में छोड़ा है जरूर। क्योंकि आपका बच्चा अगर स्कूल में जाता है और रोज टीचर की ये बस पांव को हाथ लगा के आ जाए, स्कूल में प्रिंसिपल का दर्शन करके आ जाए और आपको कहे कि हाँ मैं स्कूल में गया, प्रिंसिपल का दर्शन किया, टीचर के पांव को हाथ लगाया, आप खुश होंगे? आप कहेंगे तूने पढ़ा क्या, तुम्हारी टीचर ने पढ़ाया क्या, वो बताओ। तो बाबा भगवान सर्वशक्तिवान हमारा सत्य मात पिता है, सत्य शिक्षक है, सत गुरु है, वो हमको प्रैक्टिकल में पढ़ा रहे हैं। मेरा ये निश्चय अचल अटल अडोल है। सिर्फ भक्तों की तरह मंदिर में जाकर ऐसे माथा झुकाकर पंडित जी के पांव को हाथ लगा के नहीं आना है, लेकिन हमें बाबा मुरली में क्या सुना रहे हैं उसमें से तीन या पांच बात रोज नोट करो। आज बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने क्या कहा? अब पिछले दो तीन दिन से बाबा कह रहे हैं फालतू बातें नहीं करनी है, झड़मुई झंगमुई नहीं करनी है, तेरा मेरा नहीं करना है। मुरली हम सुन लेते हैं और फिर सारा दिन वही करते रहते हैं। चूंकि पुरुषार्थ नहीं करते हैं, अटेंशन नहीं देते हैं, इसलिए फिर लगता है हमने तो भक्ति पाठ पूजा छोड़ दिया। आगे हम जरा सा वो चंदन घिसते थे और अपने यहां तिलक लगाया, मूर्ति पर भी लगाया, तो सोचा हमारी पूजा हो गई। अब मुझे चंदन नहीं घिसना है, वैसे आप लगाते हो आपकी मर्जी, हमारी कोई मना नहीं है, लेकिन चंदन स्थूल में घिसने की जरूरत नहीं है। बाबा ने आज क्या कहा, ये मनन चिंतन करना, ये है चंदन घिसना। रोज सोचो आज मैंने चंदन घिसा या नहीं घिसा। भक्ति में कहते हो ना, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, क्यों? जब मैंने घिसा था तो मैं अपने आप नहीं लगा सकती थी तिलक, भगवान तिलक देता है। तुलसीदास, तुलसी कौन था? गरीब। हम सब आत्माएं भी क्या हो गई? एकदम ज्ञान योग से वंचित, गुणों शक्तियों से वंचित, एकदम गरीब। परमात्मा की पहचान मिली, संबंध जुटा, अब तुलसीदास चंदन घिसे। आत्मा तुलसीदास, कोई शरीर के नाम की बात नहीं है। क्या मैंने पहचाना मैं आत्मा हूं? अपने आप से पूछिए, बार बार पूछिए, मैं आत्मा हूं। सिर्फ कहना नहीं है, हम नए नए लोगों को भी सुना देते हैं, बस जी पक्का कर लीजिए मैं आत्मा हूं, यहां रहती हूं। मैंने पक्का किया मैं आत्मा यहां हूं। मैं आत्मा भ्रिकुटी में रहती हूं। फिर बैठिए सीधा होकर, कीजिए ये अभ्यास, एकदम सीधे होकर बैठिए, ये अभ्यास कीजिए। इस भ्रिकुटी के बीचों बीच मैं शुद्ध आत्मा, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा विराजमान। ये संकल्प बार 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 हमारे अंदर, आप कहेंगे रटना है? नहीं, रटना नहीं है, लेकिन हाँ शुरू शुरू में तो आपको रटना पड़ेगा, ताकि और कोई संकल्प बीच में ना आए। मैं शुद्ध आत्मा, जैसे ही कहते हैं मैं शुद्ध आत्मा, देखो फील होता है मैं शुद्ध आत्मा यहां हूं। सच्चिदानंद स्वरूप, तो वो स्वरूप बना या इधर उधर की बातें, उसने ये किया, उसने ये किया, वो मेरा ये ले गया, उससे मुझे ये लेना है, ये सब आ रहा है मन में। शब्द है सत चित आनंद, उसके आगे स्वरूप, मैं आत्मा सत चित आनंद स्वरूप। सत चित आनंद नहीं हूं, स्वरूप हूं, मैं उसका रूप हूं, सचमुच मैं हूं सत्य स्वरूप। एक एक चीज को देखें, मैं सत्य स्वरूप हूं, चैतन्य हूं, आनंदित हूं, या मुझे चिंता लगी हुई है? आत्मा चैतन्य है, सत्चित चैतन्य है, और मैं कैसे बैठी हूं या बैठा हूं? क्लास में आए, चैतन्य होगा तो कैसे बैठेगा? एकदम अलर्ट होकर बैठेगा। और जड़ होगा, आपके पास कोई चीज है, आप देख लीजिए, कोई गुड़िया है, कोई खिलौना है, ये फूल है, आपने जैसे रख दिया वैसे ही पड़ा है, खिलौने को जैसे रखेंगे वैसे ही पड़ा रहेगा। मैं भी क्लास में आई, बस ऐसे बैठी हूं, तो इसको चैतन्य कहेंगे? चैतन्य माना जो सुन रहे हैं, बाबा जो कह रहा है। मैं आत्मा उसमें रस ले रही हूं, आनंद ले रही हूं। अगर मुझे बाबा की मुरली में रस नहीं आ रहा, बस ऐसे बैठ के सुन रहे हैं, झुटका भी खा रहे हैं, या अलर्ट हैं फिर सोच रहे हैं अभी तो घर जाएंगे, सब्जी लेके जाएंगे, वो फलाने को ये कहना है। चैतन्य माना क्या? चैतन्य माना जो अलर्ट है, जो एक्टिव है, जो जहां है उस अनुसार कर्म कर रहा है। तो मैं सत्चिदानंद स्वरूप आत्मा बाबा के घर में बैठी हूं, बाबा को याद करना है, बाबा से शक्ति लेनी है, लेनी बाबा से शक्ति है और संकल्प चल रहे हैं, अरे वो फलाने ने मेरे से 10,000 लिया था, दिया नहीं, बाबा आज मैं जाऊंगा लेने, मिल जाए तो फिर मैं जो है भोग लगाऊंगा। बाबा ने तो कभी कहा ही नहीं कि तुम्हें मिलेगा तो भोग लगा देना। उसके साथ सौदाबाजी नहीं है। हमारे संकल्पों में इतनी शक्ति हो, इतनी शुद्धता हो, आत्मा में शक्ति हो। अब मैं ये सोच रही हूं मुझे मिल जाए, तो माना मुझे चिंता है ना, चिंता स्वरूप हूं, तो चिंता स्वरूप नहीं बनना है। मैं बाबा का बच्चा हूं, सदा विजयी हूं। फिर आप कहेंगे बहन जी अगर ना मिला तो, अगर कोई हमारा कर्मों का ऐसा हिसाब, पुरुषार्थ करेंगे, पुरुषार्थ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कर्मों का कोई हिसाब किताब होगा, नहीं मिला तो भी चिंता नहीं करेंगे। कोई पिछला हिसाब किताब था, चुक तो हुआ, आगे से सावधान, बुद्धू बन के नहीं देना है किसी को भी, सावधान रहिए। हमें बिल्कुल भी दुनिया में इस प्रकार की लेन देन रखनी नहीं है। अभी कलयुग की अंतिम घड़ियां चल रही हैं। लालच नहीं करना। हम सोचते हैं आप बिजनेस को बढ़ा लें, ये कर लें। आप सब भाइयों का क्या अनुभव है? अभी तो वो समय गया, बुरा नहीं मानना, आप देख लीजिए, आप सोच लीजिए बढ़ाना है। आजकल पता ही नहीं पड़ रहा है कि इसका दाम कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है, कौन देगा कौन लेके जाएगा। कर्म करना है। हे अर्जुन तू कर्म कर, फल की चिंता ना कर, मतलब सावधानी से कर्म कर, लेकिन विकारों के वशीभूत होकर मुझे इसमें इतना बेनिफिट हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमें काम धंधा करना है जीवन चलाने के लिए। करण करावन हार बाबा है। हमारी मम्मा का ये महावाक्य, मम्मा को सदा पक्का था करण करावन हार वो है। मैं आत्मा निमित्त मात्र हूं, लेकिन हम जब करते हैं तो हम तो सोचते हैं ये देंगे, ये लेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, फिर जब घाटा वाटा पड़ जाता है तो कहते हैं अरे हम तो बाबा के बच्चे हैं, भोग भी लगाते हैं, भंडारी भी करते हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब कर्म करते हैं तो मैं जितना अच्छा धंधा बिजनेस कर सकती हूं कोई नहीं कर सकता है। लेकिन ये धंधा सचमुच एक है, कहना हाँ बाबा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा, लेकिन मेरे को हाथ ना लगाना। दिल से पहले मेरी ये भावना, जिनकी रही भावना जैसी, हमारी भावना इतनी श्रेष्ठ हो, हम सचमुच सर्वशक्तिवान बाबा के बच्चे हैं। वो सर्वशक्तिवान बाबा की छत्र छाया में है। निश्चय का मतलब क्या है? अचल अडोल का अर्थ क्या है? चलते फिरते हमारे अंदर यही, जैसे वो लोग भक्ति में होते हैं ना जो मंत्र जाप करते हैं, गुरु जी ने कह दिया 2 माला फेरना, 10 फेरना, वो बैठ के माला भी फेरते हैं, लेकिन फिर चलते फिरते उसका अभ्यास करते हैं, उनके अंदर वो ही रटन मंत्र की चलती रहेगी। हम भी बैठकर योग करते हैं, कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा तो बैठ के योग करें, सवेरे या शाम जब भी फुर्सत मिले। बाबा तो हमें कितनी छूट देता है। तो जब हम दृढ़ता से अचल अडोल, माना क्या, हम बाबा को याद करते हैं, दृढ़ता से याद करें, कंडीशन से नहीं, बाबा ये हो जाए बाबा ये हो जाए ना। एक ही कंडीशन है बस, बाबा मैं आपका बना रहूं और आप मेरे रहें। कंडीशन लगानी है तो एक ही लगाइए, बाबा मैं आपकी हूं, आप मेरे हैं, बस। ये माया, ये पांच भूत, ये विकार मुझे टच भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो भी कर्म है वो किसी ना किसी विकार के अधीन है। चाहे काम हो, क्रोध हो, लोभ, मोह, अहंकार, हम किसी ना किसी चीज के वशीभूत होकर करते हैं। लेकिन मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ऐसे नहीं किसी ने कह दिया भाई तुम्हारे पे तो वो मंगल बैठा है और राहु बैठा है। मंगल और राहु, ये तो सबसे ज्यादा कल्याणकारी हैं। आप कहेंगे बहन जी क्या कह रहे हैं, क्या विचार है आप सबका, कल्याणकारी हैं या नहीं है? जो कहते हैं कल्याणकारी है हाथ उठाइए। थोड़े उठा रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी ये कल्याणकारी कैसे है। मान लीजिए आप गए और आपने कोई आपका जो बहुत अच्छा पंडित है उससे पूछा कि बताओ भाई मेरा ये काम होगा या नहीं होगा, शुरू करूं ना करूं, नौकरी लगेगी या नहीं। अब वो कहता है कि आपके ऊपर तो जी मंगल भी है और राहु भी है, या खाली राहु बैठा है तो आपके काम में रुकावट आएगी। तो आपका दूसरा प्रश्न कौन सा होता है कि अच्छा पंडित जी फिर ये बताइए इसका राहा फिर क्या करें। तो राहु आपको किधर ले गया, किधर ले गया? आप राहा पूछ रहे हैं। वो कहता है आप ये यज्ञ करवा लीजिए। पंडित जी क्या लगेगा इसमें, बस 10-15 हजार का खर्चा है, आप तुरंत निकाल के लीजिए। तन मन धन पंडित जी को दे दिया। तो राहु अच्छा हुआ या बुरा हुआ? वो हमें भगवान की तरफ हमारा मुंह मोड़ता है, भगवान की तरफ ले जाता है। तो बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं मेरे पर तो मंगल है, मेरे पर राहु है, मेरे पर फलाना है। जितने भी हमारे ये ग्रह हैं ये केवल हमें आगे की ओर बढ़ाते हैं, ऊपर की ओर ले जाते हैं, भगवान की याद दिलाते हैं। आप भगवान की याद में रहिए, सर्वशक्तिवान शिव बाबा को अपना साथी बना लीजिए, उससे ऊपर कोई है ही नहीं। जब शिव बाबा मेरा साथी है, शिव बाबा मेरा रक्षक है, मैंने उसको अपना बना लिया, मैं उसकी छत्र छाया में हूं, बताइए अब ये राहु और शनि और मंगल मेरा क्या बिगाड़ेंगे? क्या विचार है आप सबको? विशेष यूपी वाले बैठे हैं ना, वो धरनी है ही भक्ति पाठ पूजा की धरनी है, लोग इसी में फंसे रहते हैं। जितने भी ग्रह हैं ये हमारा मुख भगवान की ओर मोड़ते हैं। इसलिए बाबा कहता है कोई भी बात है उसको शुक्रिया। मान लीजिए कोई कहता है आपके ऊपर तो मंगल है इसलिए आपका एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई, वो बहुत बहुत शुक्रिया। अब टांग टूट गई, प्लास्टर चढ़ गया तो 21 दिन तो मुझे घर में बैठना ही बैठना है, बैठ के मैं बाबा को याद करूं, अव्यक्त मुरलियां साकार मुरलियां पढ़ू, समय सफल करूं, संकल्प सफल करूं। ना कि अरे हम तो बाबा के बच्चे हैं फिर मेरी ये टांग क्यों टूटी, अरे बाबा के बच्चे तो आप आज बने हैं, पहले क्या थे, कहां थे? वो जो उधार लिया हुआ है वो चुकाएंगे या नहीं चुकाएंगे? क्या विचार है? जो उधार लिया है वो तो चुकाना पड़ेगा, अचल अडोल होकर के उसको चुकाइए, खुशी खुशी से अपना हिसाब किताब चुकतू कीजिए। तो बाबा के बने हैं, बाबा के बनकर रहें, बाबा की श्रीमत पर चलें, किसी भी प्रकार का संशय नहीं, किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं, मेरे जैसा भाग्यवान कौन जिसका साथी है भगवान, क्या करेगा आंधी और तूफान। तो इस बार जो आप मधुबन में आए हैं, दुनिया के हालात तेजी से बदल रहे हैं, चाहे वो भारत हो या विदेश हो, ऐसा नहीं यहां ही बदल रहे हैं, सब जगह आप देखिए, वो इजराइल देखिए, ईरान देखिए, अमेरिका देखिए, किसी को भी देख लीजिए, दुनिया में कितनी हलचल है। अब आवश्यकता है, मैं बाबा का बच्चा अचल, अटल, अडोल होके रहूं। बाबा ने तो हमें सब बताया, ये बच्चे होगा। कल्प वृक्ष के सामने बैठो, बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे योग में बैठते हैं ना, इन चित्रों के सामने बैठो। तो हमें कोई भक्ति की तरह चित्रों की पूजा तो करनी नहीं है, लेकिन महसूस करना है, मैं आत्मा कहां हूं। कल्प वृक्ष के नीचे मम्मा बाबा के साथ बैठी हूं, बाप दादा की शक्तियां मिल रही हैं, और जो शक्तियां मिल रही हैं ये मैं पूरे इस कल्प वृक्ष को भी सींच रही हूं, दान दे रही हूं। तो लेंगे भी देंगे भी, जमा भी कर रहे हैं, दान भी कर रहे हैं। जितना दान करेंगे उतने वरदान हम बच्चों को मिलेंगे। तो अपनी झोली वरदानों से भरनी है, वरदान तब मिलेंगे जब मेरा निश्चय, निश्चय बुद्धि कैसे, डामाडोल वाले या अडोल वाले, कौन से बनेंगे, अडोल। हम बाबा के बच्चे हैं, उस ज्ञान सागर ने, सर्वशक्तिवान बाबा ने आकर ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों को ये शिक्षा दी है, हम बच्चों को लक्ष्य दिया है मनुष्य से देवता बनने का। आप बताइए आज तक संसार में किसी ने दिया है लक्ष्य मनुष्य से देवता बनने का। जो कहते भी रहते हैं फलाने में बाबा आया, फलाने में ये आया, क्या वो स्मृति दिलाते हैं कि सचमुच हमें देवता बनना है, सत्युग में चलना है, संस्कार सत्युगी धारण करने हैं। हमने मम्मा बाबा को देखा, अपनी बड़ी दादियों को देखा, हमारी दादियों में, आप में से भी बहुत से भाई बहनों ने बड़ी दादियों को देखा होगा, हमारी दादियों में क्या रूहानियत थी, कितनी बड़ी से बड़ी घटना हो जाए, हमारी दादियां कैसी थी, एकदम शांत भाव, कोई भी बात हो जाए बाबा हमारा साथी है, बाबा बैठा है, बाबा को साथ रखो। और कोई बात दादियों के मुख से निकलती ही नहीं थी, जिन्होंने बाबा, जिन्होंने दादियों को देखा, हाथ उठाओ जिन्होंने बड़ी दादियों को देखा है, देखो है ना, ही हमारी दादियां ऐसी, एकदम निश्चय बुद्धि, खाली तपस्वी नहीं थी, तपस्या तो हमारी दादियों ने, बड़ी बहनों ने, भाइयों ने खूब की, लेकिन तपस्या की अनुभवी मूर्त थी। आप दादियों का चित्र देखिए, आयु में तो कोई भी छोटे नहीं है, सबकी आयु बड़ी बड़ी थी। हमारी दादी जानकी तो 100 प्लस में थी, लेकिन ज्ञान और योग का उमंग देखिए, उनके अंदर वो दृढ़ता देखिए, उनका चेहरा देखिए। आज भी देखो, दादी रतन मोहिनी जी से मिलो, भले दादी अब बोलती नहीं है कुछ भी, चेहरा देखो, शक्तिशाली योग युक्त, ऐसा बुड्ढों जैसा नहीं, ऐसे कोई ऐसे बुड्ढे बन के नहीं बैठे। हमने अपने बड़ों को किसी को भी ऐसा नहीं देखा। दुनिया में तो देखो क्या हाल हो जाता है बुड्ढों का, दादियां देखो। रूहानियत तो अचल, अटल, अडोल माना, जिसके अंदर रूहानियत की शक्ति है, हर कार्य में निश्चिंत है, हर कार्य में बाबा को अपना साथी बनाया है, निश्चय बुद्धि है, उसकी याद में मस्त हैं, तो बाबा के घर से मधुबन को हम कहते ही हैं वरदानी भूमि। यही वरदान हम बच्चों को लेके जाना है, गांठ बांध लीजिए। मैं वरदाता बाबा का बच्चा हूं, मेरी झोली जो है वरदानों से भरी हुई है, और सबसे बड़ा वरदान स्वयं सर्वशक्तिवान, सर्व गुणों का भंडार, सत्य मात पिता, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु, शिव बाबा मेरा बाबा है। इस मंत्र को पक्का कीजिए, मेरा बाबा है। ऐसे नहीं, कई बार कई भाई बहन बातें करते हैं ना, बात करते करते कहेंगे बहन जी आपका बाबा ऐसे भी तो कहता है। अरे आपका बाबा, और आपका बाबा क्या कहता है, आपका बाबा क्या कहता है, बाबा मेरा बाबा है। ये भावना अंदर में पक्की हो, मेरा बाबा। कई मुरलियों में बाबा ने कहा बस बच्चे यही मंत्र पक्का कर लो सारा दिन, मेरा बाबा। तो कोई परीक्षा आई भी होगी तो अपने आप उसमें हम पार हो जाएंगे, तो कौन सा मंत्र पक्का करेंगे? सब बोलिए मिलके, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। तो बस अब जो भी आप चार पांच दिन यहां रहेंगे, कोई काम है तो बात कीजिए, वरना इस मंत्र को जपते रहिए, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। तो हमारी मनोस्थिति पक्की होगी, हमारा निश्चय पक्का होगा, हर कार्य करते हुए हम अचल, अटल, अडोल रहेंगे। तो बाबा के घर से ये वरदान लेके जाना है। तो अब एक बार फिर आप सब सीधा होके बैठिए, अलर्ट होके, आपके हाथ में कुछ है तो छोड़ दीजिए, और अपने आप को अपने भीतर ले चलिए। नेत्र खुले रखिए, धीरे धीरे अपने ध्यान को यहां मस्तक के बीच में ले आइए। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान शिव बाबा की संतान हूं, सर्वशक्तिवान शिव बाबा मुझ आत्मा के सत्य मात पिता, सत्य शिक्षक, सतगुरु हैं। शिव बाबा मेरे मात पिता वर्तमान में ज्ञान योग की शक्ति से पालना कर रहे हैं। पिता हैं, वर्तमान में पवित्रता का वर्षा दे रहे हैं, और भविष्य में नई सत्युगी दुनिया का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग का वर्षा देते हैं। ऐसे मीठे प्यारे मात पिता शिव बाबा को मैं आत्मा सदा सदा के लिए अपने साथ रखती हूं। सत्य शिक्षक शिव बाबा कितनी अनोखी अनूठी शक्तिशाली शिक्षा दे रहे हैं। जिस शिक्षा को पाकर वर्तमान में मैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्रह्मा मुख से शिव बाबा की सच्ची सच्ची गीता सुन रही, कितनी ऊंची पढ़ाई, जिस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बन जाए, शुक्रिया शिव बाबा शुक्रिया। अटेंशन रखें, पूरा ध्यान भ्रिकुटी के बीच में रहे। शिव बाबा मुझ आत्मा के सच्चे सच्चे सतगुरु हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। प्रकाश अर्थात स्पष्टता, प्रकाश अर्थात निर्भयता, प्रकाश अर्थात शक्ति, वाह बाबा, मेरे सच्चे सच्चे सतगुरु शिव बाबा, आपने तो तीसरा नेत्र देकर मेरे भाग्य के द्वार खोल दिए। कितना स्पष्ट ज्ञान बाबा आपने मुझ आत्मा को दिया, कोई संशय नहीं। कोई अंधविश्वास नहीं, मेरा तो एक शिव बाबा, ज्ञान की स्पष्टता से मन के किसी भी कोने में कोई भी प्रकार का भय नहीं। ज्ञान मिला, योग लगा, स्वयं सर्वशक्तिवान शिव बाबा मेरे साथी बने, मेरे सतगुरु बने। सतगुरु की छत्र छाया में मैं आत्मा सदा सदा के लिए निर्भय हो गई, भय मुक्त हो गई। वाह बाबा, थैंक यू बाबा, इस जीवन में ही आपने मुझे मुक्ति का वरदान दे दिया। दिल की गहराई से पुनः बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करें। ध्यान को भ्रिकुटी के बीचों बीच रखें। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान शिव बाबा की छत्र छाया में ओम शांति।